लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हमने अपने कल के प्रसारण के अंत में कहा कि समझौता बहुधा हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जिसके द्वारा शांति के ठोस मार्ग निकलते हैं। यद्यपि परिवर्तन की प्रक्रिया जो लंबे समय तक शांति को बनाए रखती है, लोगों के द्वारा ही पहल की जाती है, जहां हर कोई चाहे वह अपने दैनिक जीवन को कैसे भी जी रहा है, अपनी ओर से एक प्रभावकारी खमीर की भांति कार्य कर सकता है। बड़े परिवर्तन कुर्सी या दफ्तर पर बैठकर उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि हर किसी को एक बड़ी सृजनात्मक परियोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत है। यह इतिहास का एक नया अध्याय लिखना है, एक पृष्ठ जो आशा से भरी हो, शांति और मेल मिलाप से भरा हो। शांति एक वास्तुकला है जिसमें समाज के विभिन्न संस्थान योगदान करते हैं, प्रत्येक अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र अनुसार। लेकिन शांति एक कला भी है जिसमें हम सभी शामिल होते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुई विभिन्न शांति प्रक्रियाओं से हमने सीखा है कि शांति बनाने के ये तरीके बदले की भावना से ऊपर राजनीति और कानून के बीच नाजुक सद्भाव आम लोगों की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अच्छी राजनीति या आर्थिक समूहों के बीच न्यायिक ढांचे और संस्थागत व्यवस्था से शांति प्राप्त नहीं होती है। हमारी शांति प्रक्रियाओं में उन क्षेत्रों के अनुभवों को शामिल करना हमेशा सहायक होता है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, ताकि समुदाय स्वयं सामूहिक स्मृति के विकास को प्रभावित कर सके। श्रोताओं, देश में सामाजिक शांति निर्माण अपने में खत्म नहीं होती है, बल्कि यह एक खुला प्रयास है, एक प्रयास कभी खत्म नहीं होने वाला, जो हर किसी से निष्ठा की मांग करती है और हमें देश में एकता के निर्माण हेतु अथक प्रयास करने हेतु चुनौती देती है। शांति स्थापना और सह अस्तित्व के मार्गों में बाधाओं, विभिन्नताओं और अलग दृष्टिकोण के बावजूद यह कार्य हमें अपने मिलन की संस्कृति को बनाए रखने हेतु निमंत्रण देता है। यह हमसे इस बात की मांग करती है कि हम राजनीति, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के केंद्र में व्यक्ति को रखें जो अपने सर्वोच्च मानवीय सम्मान में आनंदित होता और जन सामान्य की भलाई का आदर करता है। यह दृढ़ संकल्प हमें बदला लेने के प्रलोभन और अल्पकालिक पक्षपातपूर्ण हितों की संतुष्टि से बचने में मदद करे। लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किसी भी रूप में समस्याओं को सुलझाने में मदद नहीं करता है। यह विशेष रूप से जैसे कि कोलंबिया के धर्माधर्शकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है। नागरिक प्रदर्शनों की उत्पत्ति और उद्देश्य हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। कुछ में राजनीतिक हेराफेरी मौजूद होती और कुछ मामलों में पक्षपातपूर्ण तरीकों से उन्हें हितों के लिए शोषण किया जाता है। सामाजिक मित्रता का निर्माण न केवल उन समूहों के बीच मेल मिलाप की मांग करता है जिन्होंने इतिहास के कुछ कठिन दौर में अलग अलग पक्षों का चुनाव किया है, बल्कि यह समाज के सबसे गरीब और संवेदनशील क्षेत्रों के साथ एक नए सिरे से मिलन की मांग भी करता है, क्योंकि शांति अपने में युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक अथक निष्ठा है, खासकर उन लोगों की ओर से जिन्हें अपने में बड़े उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे भाइयों और बहनों की गरिमा को पहचानने, सुरक्षित रखने और ठोस रूप से बहाल करने के लिए, जिसे अक्सर अनदेखा या दरकिनार किया जाता है, ताकि वे खुद को अपने राष्ट्र के भाग्य के प्रमुख नायक स्वरूप देख सकें। बहुधा समाज के सबसे संवेदनशील लोगों को अनुचित सामान्यीकरण का शिकार होना पड़ता है। यदि कभी कभी गरीब और वंचित लोग असामाजिक दिखने वाले रवैये के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वैसे प्रतिक्रियाएं की उत्पत्ति तिरस्कार और सामाजिक बहिष्कार के इतिहास के कारण होती हैं। लातिनी अमेरिका के धर्माध्यक्ष गणों ने इस बात का अवलोकन किया है कि हमारी निकटता, जो हमें दूसरों का मित्र बनने में मदद करती है, हमें वर्तमान परिस्थिति में गरीबों के मूल्यों को करीबी से पहचानने और उनकी प्रशंसा करने में मदद करती है। हम उनके वैध इच्छाओं और उनके विश्वास को जीने के तरीकों को जानते हैं। गरीबों के लिए विकल्प हमें गरीबों से मित्रता करने हेतु अग्रसर करे। श्रोताओं, वे जो शांतिपूर्ण सामाजिक सह अस्तित्व के लिए कार्य करते हैं, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि असमानता और पूर्ण मानव विकास की कमी के कारण शांति की स्थापना असंभव हो जाती है। वास्तव में समान अवसर के बिना आक्रामकता और संघर्ष के विभिन्न रूपों को विकास के लिए एक उपजाऊ भूभाग मिलेगा और अंततः यह एक विस्फोट में परिणत हो जाएगा। जब एक समाज, चाहे यह स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, जब अपने एक भाग को स्वतः छोड़ने हेतु तैयार होता, जहां राजनीतिक कार्यक्रम या कानूनों का दबाव या निगरानी प्रणाली में मद खर्च नहीं किए जाते, तो यह निश्चित रूप में शांति व्यवस्था की गारंटी उत्पन्न करती है। यदि हम अपने में एक नए रूप में शुरू करने की चाह रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने कार्य को अपने सबसे छोटे भाई बहनों से शुरू करें। श्रोताओं, हमारे बीच बहुत से लोग हैं जो मेल मिलाप के बारे में चर्चा करने की चाह नहीं रखते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि लड़ाई, हिंसा और सामाजिक टूटापन समाज का एक सामान्य भाग है। किसी भी मानव समुदाय में हम सदैव खुले रूप में या गुप्त रूपों में दलों के मध्य शक्ति हेतु संघर्ष को पाते हैं। वहीं दूसरे सोचते हैं क्षमादान को बढ़ावा देना दूसरों के लिए जमीन और प्रभाव पैदा करना है। यही कारण है कि वे अनुभव करते हैं कि बेहतर यही है कि चीजें जैसी हैं वैसे ही रहे, दूसरे समुदाय के बीच शांति का संतुलन बनाए रखा जाए। तो वहीं दूसरे हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेल मिलाप अपने में एक कमजोरी की निशानी है। वार्ता हेतु गंभीर अयोग्यता में वे अपने को समस्याओं से दूर रखते हुए अन्यायों की अनदेखी करते हैं। समस्याओं का सामना करने में असक्षम वे अपने लिए एक आभासी शांति का चुनाव करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि क्षमा और मेल मिलाप ख्रिस्तियता के मूलभूत विषय वस्तुएं हैं, और यह कई रूपों में दूसरे धर्मों का भी एक अहम भाग है। यद्यपि हम यहाँ एक बड़ी जोखिम को पाते हैं कि इनकी अपर्याप्त समझ और प्रस्तुति अपने में उदासीनता और अन्याय, यहाँ तक कि असहिष्णुता और हिंसा को जन्म दे सकती है। यीशु ख्रिस्त ने हिंसा और असहिष्णुता को कभी बढ़ावा नहीं दिया। अधिकार की चाह हेतु शक्ति के प्रयोग को उन्होंने खुले रूप में फटकार लगाई। तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। वहीं सुसमाचार हमें 70 × 7 बार क्षमा करने की शिक्षा देता और हमें उस दुष्ट सेवक के बारे में बतलाता है जो अपने में क्षमा प्राप्त करता, जबकि बदले में वह दूसरों को क्षमा नहीं करता है। श्रोताओं, हमने संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
स्वामी तेरी दया का अंजलि। वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस आज दोपहर से कुछ समय पहले अपने निवास स्थान वाटिकन कासा सांता मार्ता लौट आए। पत्रकारों के सवालों के जवाब में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने पुष्टि की कि संत पापा फ्रांसिस को आज सुबह 10:30 बजे के बाद जमेली अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वाटिकन में कासा सांता मार्ता लौटने से पहले संत पापा फ्रांसिस मरिया मेजर बसेलिका गए, जहां मरिया सालुस पोपोली रोमानी रोम की संरक्षिका माता मरियम के प्रतीक के सामने उन्होंने अपनी सर्जरी की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया और सभी बीमारों के लिए प्रार्थना की। विशेष रूप से उन्होंने उन रोगियों को याद किया जिन्हें अस्पताल में रहने के दौरान मुलाकात की थी। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने सूचित किया कि मंगलवार दोपहर को संत पापा फ्रांसिस ने अस्पताल के बाल चिकित्सा कैंसर वार्ड में युवा रोगियों से मुलाकात की। यह विभाग उसी मंजिल पर स्थित है जहां संत पापा विगत 4 जुलाई से रह रहे थे। संत पापा ने युवा रोगियों के पास जाकर अपना स्नेह और एकजुटता दिखाई और संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांसिस्कन धर्म संघ के नए फादर जनरल के रूप में नियुक्त फादर फुसारेल्ली को बधाई दी और संत फ्रांसिस असीसी के संरक्षण में उन्हें समर्पित किया। फादर मासिमो जोवानी फुसारेल्ली 2021 से 2027 के लिए फ्रांसिस्कन ऑफ फ्रायर्स माइनर धर्म संघ के नए जनरल नियुक्त हुए। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें बधाई दी। संदेश में उन्होंने लिखा, आपके चुनाव की खबर सुनकर मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं अपनी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद का आश्वासन देता हूँ ताकि प्रभु आपके सेवा कार्यों में आपकी सहायता और रक्षा करे। सेराफिक पिता संत फ्रांसिस असीसी आपको अपने भाइयों के मार्गदर्शन में आपकी सहायता एवं प्रोत्साहन दें। नियुक्ति की घोषणा 13 जुलाई को रोम में सान लोरेंसो द ब्रिंदिसी के इंटरनेशनल कॉलेज को कार्डिनल जोवाजो ब्रेट डी एविस द्वारा सूचित की गई। वे धर्म संघी समुदायों और समर्पित जीवन की संस्थाओं एवं प्रेरितिक जीवन संबंधी संघों के धर्म संघ के प्रीफेक्ट हैं और ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर 2021 की महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। फादर फुसारेल्ली का जन्म 30 मार्च 1963 को रोम में हुआ। अपने परिवार के साथ इसी शहर में वे पले बढ़े। फ्रांसिस्कन पुरोहितों से उनकी मुलाकात तिवोली के संत फ्रांचेस्को पल्ली में हुई। उनके माध्यम से उन्होंने पुरोहितिक बुलाहट को पहचाना और 30 जुलाई 1983 को ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर धर्म संघ में अपना पहला मन्नत लिया। 30 सितंबर 1989 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। पुरोहिताभिषेक के बाद उन्होंने अगुस्तिनियानुम पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट में पैट्रिस्टिक थियोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और पोंटिफिकल एथनियम अंतोनियानुम में 1992 से 1996 तक धार्मिक विज्ञान संस्थान में धर्मशास्त्र पढ़ाया। 1999 से 2003 तक वे धर्म संघ के गुरुकुल में प्रशिक्षक, प्रांतीय पार्षद और चल रहे प्रशिक्षण के प्रांतीय और राष्ट्रीय मध्यस्थ थे। 2003 से 2009 तक फादर फुसारेल्ली जनरल कोरिया के महासचिव के रूप में अपनी सेवा दी। उन्होंने रेती प्रांत में अमात्रिचे और अकुमोली के भूकंप पीड़ितों के बीच काम किया। 2 जुलाई 2020 को उन्हें लाजियो प्रोविंस का प्रोविंशियल चुना गया। उधर बुधवार 7 जुलाई को हैती के राष्ट्रपति मोसे की हत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस ने कथित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अपराधियों की तलाश कर रही है। हैती धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने देशवासियों की मनस्थिति पर गौर करते हुए कहा कि लोगों में व्यापक भावना है अविश्वास, लोग निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम समर्थन के लिए संत पापा फ्रांसिस को धन्यवाद देते हैं, उनका सामीप्य सदा हमारे साथ है। हैतियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कैप हैतियन के धर्माध्यक्ष लार्ने सैटर्न ने कहा कि हैती में राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे के हत्यारों की जांच जारी है। एक कमांडो जो बड़े पैमाने में पूर्व कोलंबियाई सेना के सैनिकों से बना हुआ है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ भाग गए हैं। इस बीच पिछले रविवार को हैतियन पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने एक हैतियन नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसे हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख के अनुसार 63 वर्षीय क्रिश्चियन इमानुएल सैनोन, जो पिछले जून को एक निजी विमान द्वारा हैती में प्रवेश किए और पहले मियामी में 20 साल तक रह चुके थे, जांचकर्ताओं के अनुसार कमांडो का लक्ष्य राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना था, न कि उनकी हत्या करना। अपराध पर प्रकाश डालते हुए धर्माध्यक्ष सैटर्न ने कहा कि अधिकारियों को अपराधियों को खोजने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। व्यापक भ्रष्टाचार के कारण भी जनता में शासकों के प्रति अविश्वास की भावना है। मुझे लगता है कि आम भलाई की ओर उन्मुख नीति के माध्यम से विश्वास बहाल किए जाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। हम एक ठोस परिवर्तन, एक नई शुरुआत की लालसा रखते हैं। विश्वास बहाल करने के लिए सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और न्यायपालिका में सभी स्तरों पर पारदर्शिता की आवश्यकता है। उधर क्यूबा में मिगुएल डियाज कैनेल के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अनेकों को हिरासत में लिया गया है। दशकों में कम्युनिस्ट द्वारा संचालित द्वीप पर सरकार विरोधी सबसे बड़े प्रदर्शनों में से रविवार को हवाना से संतियागो तक हजारों क्यूबावासी सड़क पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वे देश के गंभीर आर्थिक संकट और महामारी से निपटने का विरोध कर रहे थे, लेकिन कई आगे बढ़ गए, स्वतंत्रता का नारा लगाने और साम्यवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। निर्वासित अधिकार समूह क्यूबलेक्स के अनुसार रविवार से देश भर में कम 100 प्रदर्शनकारियों, कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है। कुछ को विरोध प्रदर्शन में, लेकिन अन्यों को जब उन्होंने अपने घर छोड़ने की कोशिश की थी। इसी बीच राष्ट्रपति मिगुएल ने प्रदर्शनकारियों को प्रति क्रांतिकारियों के रूप में नारा दिया, जबकि उनके विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनों को संयुक्त राज्य द्वारा वित्त पोषित और उकसाया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।